ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज चर्चा करेंगे स्कंद 7 अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। ना श्रोता नानुवक्तायम् मुख्योऽपि अत्र महान्नसु यस्त्विहेन्द्रिय वनात्मा स चान्य प्राणदेयो ना श्रोता नानुवक्तायम् मुख्योऽपि अत्र महान्नसु यस्त्विहेन्द्रिय वानात्मा स चान्य प्राणदेहयो न श्रोता नानुवक्तायम् मुख्योऽपि अत्र महान्नसु यस्त्विहेन्द्रिय वानात्मा स चान्य प्राणदेहयो। शब्दार्थ ना नहीं, श्रोता सुनने वाला, ना नहीं, अनुवक्ता बोलने वाला, अयम यह, मुख्य मुख्य, प्रधान अपि यद्यपि, अत्र इस शरीर में, महान महान, असु प्राणवायु, यह जो, तू लेकिन, इह इस शरीर में, इंद्रियवान समस्त इंद्रियों से युक्त, आत्मा आत्मा, स वे च तथा अन्य भिन्न प्राणदेहयो प्राणवायु तथा भौतिक शरीर से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वे भी ना तो श्रोता है और ना वक्ता, यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तात्पर्य भगवत गीता 15:15 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। यद्यपि आत्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, किंतु ये इंद्रियों मन आदि के माध्यम से काम कर्म करने वाला प्रधान पुरुष नहीं है। आत्मा तो परमात्मा के ही सहयोग से कार्य कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही उसे कर्म करने या ना करने का निर्देश देता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कोई उनकी स्वीकृति के बिना कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उपदृष्टा तथा अनुमंता अर्थात साक्षी तथा अनुमति देने वाला दोनों ही है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ध्यान में अध्ययन करता है वही इस असली ज्ञान को समझ सकता है कि भगवान ही व्यष्टि आत्मा जीवात्मा के समस्त कार्यकलापों के संचालक एवं उन कार्यों के फलों के नियामक है। यद्यपि जीवात्मा में इंद्रियां होती हैं किंतु वे वास्तविक स्वामी नहीं होता, स्वामी तो परमात्मा होता है। फलस्वरूप परमात्मा को ऋषिकेश कहा जाता है और परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को यही सलाह देते हैं कि उनकी शरण ग्रहण करके सुखी बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। इस प्रकार वे अमर होकर वैकुंठ धाम को जाता है जहाँ उसे नित्य ज्ञानमय एवं आनंदमय जीवन की परम सफलता प्राप्त होगी। निष्कर्ष ये है कि जीवात्मा शरीर इंद्रियों प्राण तथा शरीर के वायु से भिन्न है और इसके ऊपर परमात्मा होता है जो उसको सारी सुविधाएं प्रदान करता है। जो जीवात्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है वे शरीर के भीतर सुखपूर्वक निवास करता है। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज यहाँ आने का आदेश दिया और मेरे शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो अध्याय चल रहा है, अध्याय का शीर्षक है असुर राज हिरण्यकशिपु। पूरा अध्याय हिरण्यकशिपु पर डेडिकेटेड है। तो इससे पहले हिरण्याक्ष का वध हुआ है, वराहदेव ने उनका वध किया है और उनका शरीर पड़ा है, उनकी माता और रानियां जो हैं आके रो रही हैं। हिरण्यकशिपु वहां आते हैं, हिरण्याक्ष की पत्नियों को ज्ञान देते हैं और जब हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी भी उनके बारे में क्या लिखते हैं, श्री हिरण्यकशिपु वाच। सिर्फ हिरण्यकशिपु नहीं कहा, श्री हिरण्यकशिपु के ज्ञान एकदम सही दे रहे थे, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। वही आत्मा जो शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जो कि भगवद गीता का सबसे पहला ज्ञान जो भगवान ने हमें दिया है वही ज्ञान हिरण्यकशिपु सब रानियों को दे रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि जब ये ज्ञान दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि शरीर तो नश्वरी है, शरीर तो नाश होने वाला है, उसका उसको कोई बचा नहीं सकता, आत्मा ही है जो अनश्वर है, नित्य है। पर इसके बाद जब हिरण्यकशिपु फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना है तो जाकर तपस्या करते हैं 100 दैवीय वर्षों तक तपस्या। और तपस्या भी कोई मामूली नहीं, खड़े होके एक टो पे खड़े होके हाथों को पूरा ऊपर खींच के और पूरा ब्रह्मा जी पे मन लगा के उनके पूरे शरीर को चींटियों ने दीपक ने खा लिया था। किसी तरह उन्होंने अपनी आत्मा जो है हड्डियों में बचा के रखी थी, उस तरह तपस्या की थी। कभी यहाँ पे भक्त लोग थोड़ा योगासन तो करते होंगे, कभी 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 किसी ने ताड़ आसन करने की चेष्टा की है, कोशिश की है जी? लेटे लेटे नहीं, ताड़ तो खड़ा रहता वो तो शवासन तो ताड़ आसन करने की कोशिश करें 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते टोस पे ज्यादा वो भी हिलते रहेंगे। और हिरण्यकशिपु को 100 दैवीय वर्षों तक ताड़ासन, वैसे ताड़ासन तो नहीं कहेंगे, तपस्या कर रहे थे, इस तरह खड़े थे। और फिर जब अपने सारी इंद्रिय तृप्ति को भूल के उन्होंने तपस्या की, क्योंकि तपस्या के समय तो इंद्रिय तृप्ति कर नहीं सकते। और फिर ब्रह्मा जी जब आते हैं उनको कमंडल से अपना जल छिड़क कर उनको शरीर देते हैं, शरीर फिर से आ जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को ऐसा शरीर दो जो हमारा। यहाँ पे जब ज्ञान दे रहे हैं तो कह रहे हैं रानियों से कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, मतलब ज्ञान पूरा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गड़बड़ है वो अपने पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। फिर ब्रह्मा जी से मांग रहे हैं कि मेरे को ऐसा शरीर दो जो कभी खत्म ना हो। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है भैया। यही असुरों का यही काम है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर आसुर, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको नहीं पता। हिरण्यकश्यपु ने जब ज्ञान दिया सब रानियों को, सब स्त्रियों को, नहीं समझा पाए स्त्रियां, फिर भी हिरण्याक्ष के शव से लिपट के रो रही हैं, उनको जलने नहीं दे रही हैं। यमराज जी, उनको स्वयं आना पड़ा, और वो भी किस तरह आए, छोटे से बालक के रूप में। वो ये श्लोक जो है यमराज जी बोल रहे हैं, पिछले 44 से यमराज जी शुरू कर रहे हैं बोलना, छोटे से बालक के रूप में आए। क्योंकि बालक जब कोई फिलॉसफी बोलता है तो लोग बड़ा अटेंटिव होके सुनते हैं। बड़े मंदिर से किसी भक्त को बुला लिया जाए व्यास आसन बैठ, अरे बोलते रहे तो सब सो सकते हैं आराम से लोग। पर जब कोई बालक जब कुछ फिलॉसफी बोले लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ तो इसने अच्छा बोला बोलेगा ये, देखो इतना जरा सा बालक है, कितना ज्ञान है इसमें। तो बड़े आदमियों को जल्दी लोग नहीं सुनते, बालकों को जल्दी सुनते। इसलिए यमराज भी बालक के रूप में आए कि माताओं को ज्ञान देने के लिए कि भाई अब इसका शरीर जलने दो, क्या फायदा। तब इस शरीर इस श्लोक में कह रहे हैं कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वे भी ना तो श्रोता होता है और ना मरता। यहां तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा। हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, शरीर भी दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर, उससे परे आत्मा है, पर आत्मा से परे परमात्मा है जो शरीर के भीतर रहता है, हृदय में रहता है, हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा वास करते हैं। और जो परमात्मा है उनके दो ही काम है, अनुमंता और उपदृष्टा। जो भी हम कर रहे हैं उसको विटनेस करते हैं, साक्षी करते हैं और सैंक्शन करते हैं, पर साथ साथ इंस्पायर भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। डिपेंड्स हम कैसी गाइडेंस चाहते हैं। पर इससे पीछे अगर आत्मा और शरीर के ज्ञान की तरफ जाएं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि कोई मैं आध्यात्मिक दृष्टि से मैं भी बच्चा ही हूं तो सोच ली कोई बच्चा ही बोल रहा है। दो शरीर है, ठीक है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो भागवत में ही बताया गया है कि वॉइस बड़ा ही है या अपने आप, मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है कि जब जीवात्मा जो शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर जो है उस आत्मा को लेके दूसरे शरीर में जाता है। और ऐसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जैसा भाव यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, कि जिसका जैसा भाव होगा मरते समय उसको वैसा ही दूसरा शरीर मिलेगा। और आत्मा के बारे में भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि आत्मा ना तो काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, मतलब इसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से जब आत्मा जीवात्मा इस भौतिक जगत में आती है तो आध्यात्मिक जगत में उसका एक स्वरूप है, जिस रूप में भी है। मान लो आध्यात्मिक जगत में आत्मा का रूप है, स्वरूप है मोर का, पीकॉक। तो आध्यात्मिक जगत में उसका एक स्वरूप है और उसका एक साइज भी है पीकॉक के साइज का। तो भौतिक जगत में आत्मा का साइज तो सबको पता होगा क्या होता है, 10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ हेयर, उसका शेप क्या होता है। उसका शेप क्या होता है, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसका आकार है। हाँ जी, अंगूठे नहीं, नहीं नहीं, अंगूठे का अग्रभाग तो परमात्मा का साइज है, आत्मा का शेप क्या है, आकार क्या है? सच्चिदानंद क्वालिटी है, नहीं आत्मा का शेप वही होता है जो आध्यात्मिक जग में उसका स्वरूप है, क्योंकि बताया ना आत्मा को चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो मान लो, जैसे इसलिए मैंने पीकॉक का उदाहरण दिया था, मान लो उसका स्वरूप आध्यात्मिक जग में पीकॉक का है, पीकॉक के रूप में कृष्ण राधा कृष्ण की लीला में सेवा कर रहा है, तो शेप पीकॉक का ही रहेगा, साइज छोटा हो जाता और उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। तो मान लो अभी मनुष्य योनि में कोई आत्मा है और आत्मा का शेप पीकॉक का है और मनुष्य योनि में है, अब अगली योनि में अब उसने बुरे काम किए हैं, सांप की योनि में जाना है, जा सकता है? अब सांप की योनि में ना हाथ है ना पांव है, इस शरीर में तो हाथ पांव सब है, तो आत्मा का शेप तो पीकॉक का रहेगा, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर जो है सांप का हो जाएगा, और फिर सूक्ष्म शरीर के हिसाब से स्थूल शरीर मिलेगा उसको। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मटेरियल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, और आत्मा के शेप मान लो पीकॉक का है और ये शरीर सांप का है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? फॉल्स ईगो सूक्ष्म शरीर है, वो भी मटेरियल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? किस तरह उसको ये सूक्ष्म शरीर मिला, बेस्ड ऑन व्हाट? भाव वर्ड, भाव का मतलब क्या? और थोड़ा सा एक वर्ड और चाहिए मेरे को। ओके, और आगे चलो। डिजायर डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉन्शियसनेस। सारा गेम किसका? कॉन्शियसनेस। उस पीकॉक वाली शेप की आत्मा की कॉन्शियसनेस सांप की है, तो उसको सांप का शरीर। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा राधिका रमन की जय। तो उस आत्मा की चेतना या कॉन्शियसनेस जो है, जब इस मनुष्य योनि में है तो मनुष्य वाली चेतना है, इसके उसके शरीर मनुष्य का मिला, और जब वही आत्मा की कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है, क्योंकि सारे जन्म सारे जीवन उसका कर्म खराब रहता है, एसोसिएशन खराब रहती है, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस खराब होती है, तो मरते जमे जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसा ही उसको अगला शरीर मिलेगा, उसकी सटल बॉडी चेंज हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से, और फिर स्थूल शरीर वैसा ही मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम क्या रखा? कल ही इस संस्था का इनकॉर्पोरेशन दिवस था भाई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी नहीं रखा, कॉन्शियसनेस। कि अगर हम ये अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे तो एक्टिविटीज, हमारा आउटलुक, हमारा बिहेवियर सब ठीक हो जाएगा। मेन चीज है हमारी चेतना सुधारने की, और मरते समय जैसी हमारी चेतना होगी, हालांकि उसमें भाव लिखा है यम यम वापि स्मरण भावम, वो भाव मतलब चेतना ही है, कि जैसी चेतना होगी वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। पर यहां यमराज जी बता रहे हैं कि इसके आगे भी कोई है, आत्मा और शरीर और चेतना से आगे भी कोई है, वो है परमात्मा। तो जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य की अंतिम लाइन में लिख रहे हैं ना, जो जीवात्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है वे शरीर के भीतर सुखपूर्वक निवास करता है। हमें। अच्छा, तो परमात्मा, वैसे जैसे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तो भगवान के भी तीन एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो जब हम कई बार लोगों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, और परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, परमात्मा की बड़ी कृपा है, ये है वो है, तो हम परमात्मा की सेवा करते हैं या किसी और की करते हैं? हमें किसकी सेवा करनी है? सेवा किसकी करनी है? अभी जिसकी कर रहे हो तो पता है माया की कर रहे हैं, पर करनी किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा भगवान का एक एस्पेक्ट है, परमात्मा के काम है उपदृष्टा अनुमंता। जिस तरह भगवान अगर अपने ऑफिस में बैठे हो, जज है मान लो, ऑफिस में बैठे हैं, तो जज का काम है देखना उसने क्या सही काम किया, किसी कोई चोर आया है उसने कुछ गलत काम किया है तो उसको उसके हिसाब से सजा सुनाना। पर उसी जज का कोई पुत्र है, वो अपने पिता से लाड़ करना चाहता है, उनकी गोद में बैठना चाहता है, कोर्ट में नहीं बैठ सकता, घर पे जब आएंगे तो बैठ सकता। तो भगवान वो है जो घर पे अपने बच्चों के साथ है। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो परमात्मा के रूप में उनके दो तीन ही काम है। तो हम भक्ति जो है परमात्मा की नहीं करते, ये परमात्मा से वो रिलेशनशिप नहीं बन सकता। और परमात्मा सिर्फ भौतिक जगत में ही है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं है, क्योंकि वहां शरीर और आत्मा में कोई भेद ही नहीं है। यहां तो शरीर और आत्मा में भेद है ना, तो हृदय में जीवात्मा के साथ परमात्मा निवास करते हैं, वहां तो शरीर और आत्मा का कोई भेद ही नहीं है, इसलिए परमात्मा के लिए कोई जगह ही नहीं, वहां भगवान। तो जो जीव है उसका कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान में भी जिस रूप से भी जिसका अपना संबंध है वो बात अलग है, तो भगवान की सेवा करना, परमात्मा की नहीं। अच्छा, इसमें और भी प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है बहुत ही सुंदर है। एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में खासियत देखिए कि तीन चार श्लोक जो है प्रभुपाद जी कोट करते हैं हमेशा तात्पर्य, मतलब ये दिखाने के लिए कि प्रभुपाद जी मतलब अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे, जो भी शास्त्रों में दिया गया है वही बता रहे हैं। शुरुआत ही करते हैं भगवद गीता 15:15, भगवान स्पष्ट कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम जाय। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, भूलने की शक्ति सब मुझसे ही आती है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो कई लोगों कहते हैं ना, आप आया करिए, मंदिर आया करिए, भगवान का नाम जप करिए, ओ भगवान की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी तो अपने आप याद दिला देंगे, अपने आप नाम दिलवा देंगे, अपने आप ले जाएंगे, हमें याद दिला देंगे कि मंदिर जाना चाहिए। पर जब सुबह कोई नौकरी पे जाता है, बिजनेस में खोलता है, या बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई कहता है आज परमात्मा की कृपा होगी तो ये सब करूंगा, तब तो परमात्मा की कृपा नहीं याद आती, तब तो करना ही है नहीं, बिजनेस नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, क्या फायदा। कोई बच्चा है जो कहे आज डैडी आज परमात्मा की कृपा होगी तो स्कूल जाऊंगा, तो नहीं, डैडी की कृपा तो उसे मिल जाएगी दो थप्पड़ के रूप में। ये कोई माता जी है जो कि आज परमात्मा की कृपा होगी तो खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कभी कहते हैं तो मंदिर आने के लिए क्यों? और वो लोग इस श्लोक का गलत उदाहरण दे रहे हैं, परमात्मा स्मृति ज्ञानों में पहुंचने सब तो उनसे ही आ रहे हैं, पर इच्छा जीव की होती है, परमात्मा अपने आप से नहीं किसी को ज्ञान दे रहे हैं आने के लिए और किसी को अज्ञान में रख रहे हैं कि नहीं आओ, ऐसे परमात्मा नहीं कर रहे, वो साक्षी है। साक्षी किस चीज के, कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं। इच्छा जीव की है, भगवान उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इच्छा हमारी है, आने की इच्छा हमारी है, भगवान उसका भी रास्ता बनाएंगे, नहीं इच्छा है वो भी बना देंगे कि नहीं जाओ। उसमें भगवान की कृपा कृपा है कि बिना भगवान की कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी कृपा से ही, जैसे गीता में बताया है कि ये जो शरीर में पाचन शक्ति है उनकी कृपा से आती है, वही है शरीर को, शरीर में जो अनपचता है उन्हीं की वजह से पचता है, हम जो खाते हैं उन्हीं की वजह से खाते हैं, अन्न जो बनता है वह वो भी उन्हीं की वजह से बनता है। अन्न को उगाने की उन्हें उगाने का ज्ञान कौन देते हैं? भगवान देते हैं। उससे जो रोटी बनेगी उसका ज्ञान कौन देते हैं? वही भगवान देते हैं। रोटी बनाने में जो एनर्जी लगती है वो भी भगवान देते हैं, करवाते सब भगवान है। इच्छा हमारी है, जीव जो है फंस जाता है अपनी गलत इच्छाओं की वजह से कि मैंने क्या इच्छा की। अगर चोर की चोरी करने की इच्छा है और वो चोरी करता है और उसके बाद उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, मारें, ओके नहीं, गीता में देखो ना, गीता में लिखा है कि तो सब भगवान कराते हैं, मैंने थोड़ी कुछ किया, तो पुलिस भी कहेगी जो थप्पड़ पड़ रही है ये भी भगवान ही करा रहे हैं, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। नहीं, इच्छा चोर की है और इसकी इच्छा जो है भगवान पूरी कर देते हैं। और इच्छा के बाद इच्छा के ऊपर है, एक तो इच्छा जिसकी प्रबल है और कुछ कर्मों का अगर बैंक बैलेंस अच्छा है तब उसकी इच्छा, फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर, तो इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे कोई दुकानदार जो है अपनी दुकान पर रात को ताला लगाता है और भगवान से मांगता है कि आज मेरी दुकान में चोरी ना हो, और सामने ही चोर बैठा है वो भगवान से मांग रहा है आज भगवान ऐसा मौका देना कि इसकी दुकान का ताला तोड़ो, तो भगवान किसकी इच्छा पूरी करेंगे? भगवान भी फंस जाते हैं कि परमात्मा के रूप में तो दोनों के हृदय में बैठे, तो फंस जाते हैं कि किसकी इच्छा पूरी करो, एक ही तो करनी पड़ेगी, तो किसकी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, नहीं तो लोग कई बार कहते हैं कि दुकानदार की कि उसकी चोरी ना हो, वो चोरियां तो होती है ना, तो कोई तो इच्छा कर रहा है चोरी करने की, तो चोर जो है चोरी करता है क्योंकि उसकी इच्छा प्रबल है और उसके कुछ बैंक बैलेंस है कर्म के, या दुकानदार के कुछ नेगेटिव बैंक बैलेंस, नेगेटिव कर्म बैंक बैलेंस जो सामने आ रहे हैं इसलिए उसका नुकसान हो जाता है। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में सारे जीवों के हृदय में बैठ के एक एक जीव एमीबा बैक्टीरिया से लेके ब्रह्मा जी तक सबके हृदय में बैठ के सबके मन की बात जानते हैं। ऐसा बताया गया है भगवद गीता में, जिस तरह अगर हम फूल के निकट बैठे तो फूल की सुगंध हमें आती है, उसी तरह भगवान जो है जीवात्मा के साथ बैठे और जीवात्मा की सारी इच्छाएं उनको सब पता है। अब हम सोच ही सकते हैं हमारी कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं। वो इच्छा कई बार होता है पूरी नहीं होती या पूरी हो जाती है, मन के अंदर रह जाती है, पर एक व्यक्ति है जो सब जानता है, उससे बच नहीं सकते। ये वैसे बड़ी बड़ी दुविधा वाली स्थिति है कि कैसे बचेंगे, कि वो तो अंदर बैठ के सब देख रहा है क्या कर रहे हैं। जैसे कई बार होते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, अगर जंगल में पेड़ गिरा और किसी ने नहीं देखा तो क्या वास्तविक में गिरा? मतलब ये है, अगर हमने कोई कार्य किया और किसी ने देखा नहीं तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, देखने वाला बैठा है, चाहे पूरा अंधेरा हो कुछ भी हो वो फिर भी बैठे, वो देख रहे हैं। और वहीं हम फंसते हैं पुलिस को कुछ रिश्वत दे के बचा जा सकता है, पर वहां रिश्वत भी नहीं चलती, वहां फंस जाते हैं। तो परमात्मा जो है फिर उस जीव के कर्मों के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से और खासकर उसकी चेतना के हिसाब से फिर उसको नए शरीर में लेके जाते हैं। परमात्मा इतने अच्छे हमारे मित्र हैं कि जिस भी योनि में हम जाएं फिर भी हमारे साथ 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 चलते हैं, कि कम से कम किसी योनि में आके तो मेरी तरफ घूमेगा, मेरी तरफ मुड़ेगा, अपना ध्यान मेरे पे लगाएगा कि मैं भी साथ में बैठा। हमारे सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े मित्र जो है परमात्मा ही है, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कोई नहीं रहेगा साथ। पर लोग जो है इस चीज को भूल जाते हैं, समझते नहीं, मानते नहीं। वो गाइड करने को भी तैयार है, जैसे कठ उपनिषद में बताया गया है, दो पक्षियों का उदाहरण है, एक पेड़ की शाखा पर बैठ के दो पक्षी बैठे हैं, एक जो है अपना फल खा रहा है, अच्छा या खराब फल खा रहा है, दूसरा पक्षी बस वेट कर रहा है कब ये मित्र मुड़े। जीवात्मा जो है अपने कर्म के फल खा रहा है, भुगत रहा है, परमात्मा साथ बैठे, भगवान का रूप है, उनकी तरफ मुड़ जाओ, भक्ति कर लो, बच जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं, अज्ञान में है जी, वो इस चीज को नहीं समझता। तो ये अज्ञान की वजह से ही अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। और यह अज्ञान क्या है कि अपनी इंद्रिय की तृप्ति ही करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वो तृप्ति हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं रह जाएंगी, वो जब वो इच्छा रह जाएगी मन उसमें लग रहेगा, चेतना वैसी बन जाएगी, उसको पूरा करने के लिए फिर नया शरीर मिलेगा, फिर उस योनि में जाना पड़ेगा, फिर वहां इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा, फिर दूसरी योनि में, फिर चौथी, तीसरी, चौथी, ऐसे चलता रहता है। 84 लाख योनियों में इस तरह जीव जो है भटकता रहता, भटकता रहता, वह परमात्मा हमेशा उसके साथ फिर भी रहेंगे। अब मुड़ जाओ, अब समय है, अब मुड़ जाओ। पर स्वतंत्रता फिर भी जीव को है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो जीव में भी आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है कि इच्छा कर सकता है, काम करने की शक्ति, सोचने की शक्ति सब परमात्मा से आएगी, इच्छा सिर्फ जीव की होगी। और उस इच्छा के चलते फिर वो, उसकी इच्छा है, सैंक्शनिंग भगवान करते हैं, प्रकृति के 3 गुण जो है जीव को पकड़ लेते हैं, जिस गुण में भी काम करना है, ये जिस गुण में भी उसकी चेतना है, फिर उस तरह के उसे काम कराती है। और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े 30 मार खा, हम क्या कर भी क्या सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मत्ता स्मृति और ज्ञानम अपोहनम च, राइट, मेरे से ही विस्मृति या भूलने की शक्ति भी मेरे से ही आती है। मान लो हम रात को जब सोते हैं, जब कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, रात को सोया, रात को सोते वक्त सब भूल जाता है, राइट, कि वो बिजनेसमैन है, उसका करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, क्या क्या नहीं। और अगर सुबह उठे भगवान भुला दें, वाकई भुलवा दें कि तुम बिजनेसमैन हो, क्या कर लेगा। परमात्मा को भुला दे कि बिजनेसमैन थे, क्या कर लेगा। ये याद ही नहीं होगा किसको ऑर्डर देना था, कहां सामान देना था, किससे पैसा लेना था, क्या नहीं करना था, सब भूल जाएगा। क्या है वो जीव, क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा डॉक्टर है, रात को सोया भूल जाता है, सुबह उठ के भूल जाए कि मैं डॉक्टर हूं, ऑपरेशन नहीं कर सकता, दवाइयां नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सब परमात्मा की कृपा से वो जीव काम करता रहता है, उसको याद आ जाता है। रात में हम सोते हैं भूल जाते हैं डॉक्टर है, सुबह उठते हैं परमात्मा ही याद दिलाते हैं कि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर की तरह काम करो। सब उनकी कृपा से हो रहा है, वो भुलाने को भुला भी सकते। तो हमें ये इस बात के लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि उनकी कृपा से, उनकी अहेतु की कृपा, हमने कुछ काम भी नहीं किया जिससे उनकी कृपा मिले, बिल्कुल अहेतु की कृपा से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। इसलिए यमराज जी बोल रहे हैं ना यहाँ कि जीव जो है ना तो वक्ता है ना श्रोता है, अपने कैपेबिलिटी से ना तो हम बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं ना श्लोक याद कर सकते हैं ना कीर्तन कर सकते हैं ना पुजारी कहे हम भगवान की ड्रेसिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये सब परमात्मा ही है जो हमें अंदर से ज्ञान भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, तो उनकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जीव जो है सिर्फ और सिर्फ बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है और कुछ भी नहीं, और इतना जरा सा एक बिंदु कर भी क्या सकता है। ये तो हम सोच लेते हैं हम बहुत कुछ हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार तमालकृष्ण महाराज को कुछ ज्ञान दिया था। तमालकृष्ण महाराज इस्कॉन में बहुत बड़े सन्यासी रहे, प्रभुपाद जी के निजी सचिव भी रहे, बहुत सेवा की उन्होंने प्रभुपाद जी की। तो लॉस एंजलिस या उस एरिया में, अमेरिका में पूरे, वैसे तो राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के इंचार्ज थे, और उनके नेतृत्व में बहुत सारे भक्त थे, बहुत बसें वैन कारें चलती थी, हर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में जाते थे, प्रचार करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बहुत बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था। बहुत बड़े लीडर भी थे तमालकृष्ण महाराज, पर बाकी भक्तों को कुछ समस्या आ रही थी क्योंकि थोड़ा कड़क लीडर थे। रिपनी कृष्ण प्रभु तो बहुत ही शांत, बहुत ही हम्बल लीडर है। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको अपने लॉस एंजलिस टेम्पल में, अब जहाँ प्रभुपाद जी जिस कमरे में होते थे उस कमरे में बुलाया, और तमालकृष्ण महाराज प्रभुपाद जी आमने सामने बैठे हैं, और प्रभुपाद जी उनको ज्ञान दे रहे थे कि सबसे ऊपर जो ग्रह है गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा है आध्यात्मिक जगत में, तो वहाँ भगवान कृष्ण अपने सब संगियों के साथ रहते हैं। कृष्ण के पहले विस्तार होते हैं बलराम जी, और बलराम जी से पहले फिर विस्तार होते हैं चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। इन संकर्षण से फिर विस्तार लेते हैं नारायण, नारायण जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, नरसिंह देव, वामन देव, वराह देव, ये सब फॉर्म्स हैं, और असंख्य वैकुंठ लोक हैं जिसमें सब नारायण फॉर्म्स जो हैं रहते हैं। इन नारायण से फिर चतुर्व्यूह विस्तार लेते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। जो दूसरे संकर्षण है फिर इनसे विस्तार होता है महाविष्णु का। महाविष्णु जो है कारण सागर में लेटते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो इनके सांस, इनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड जो है प्रकट हो जाते हैं, और जब सांस वापस लेते हैं तो ब्रह्मांड जो है इनके शरीर में चले जाते हैं। तो असंख्य ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं इनके शरीर से। तो महाविष्णु जो है हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, हर ब्रह्मांड का आधा जो भाग है अपने पसीने से भर देते हैं, जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं। उस गर्भोदक सागर में महाविष्णु लेटते हैं, उनको फिर गर्भोदक क्षय विष्णु कहा जाता है। उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं, उनको कृष्ण से विज्ञान मिलता है कि सब सृष्टि की रचना की जाए, और फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर। सृष्टि में भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाते हैं ग्रहमंडल, और उसमें जो बीच में जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें एक ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, इसमें से एक देश है अमेरिका। अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, इसमें एक शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में हजारों सड़कें हैं, जिसमें एक सड़क है वाटसेक एवेन्यू, जिसपे हमारा मंदिर है। इस सड़क पे भी कई 100-150 घर हैं, तो इसमें से एक घर जो एक बिल्डिंग है उसमें ये हमारा मंदिर है। इस मंदिर में भी कई कमरे हैं, जिसमें एक कमरा है जिसमें अभी हम और तमाल कृष्ण दास बैठे, और ये तमाल कृष्ण दास इस कमरे में बैठ के सोचता है, ये सब कंट्रोल करता है कि ये सब कुछ कंट्रोल करता है। तो तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि जब उन्होंने ये सुना तो उनकी ईगो जो है उसी तरह निकल गई जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाती है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना शरीर कंट्रोल नहीं होता, मन तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। जब चैंटिंग करते हैं तो कहां कंट्रोल होता है, कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह कंट्रोल हो, किसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र के जप में ध्यान लगे, भगवान पे ध्यान लगे, कहां लगते हैं? तो हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पंजाबी बाग में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, सब बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, पर बड़े मंदिर में तो ऐसा होता है कि जब हम जप करते हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे नहीं निकलता, ज्यादातर क्या निकलता है, अरे कितना 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 हरे हरे, मतलब कितना हो गया और कितना रह गया, मन इस पे रहता, भगवान के नाम पे मन नहीं जाता। तो कहां से, मन भी कंट्रोल में नहीं है, शरीर भी कंट्रोल में नहीं है, शरीर के अंदर जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं ज्ञान भी नहीं है, और कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। तो सोचने थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे, कपाल भाती कर लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, कुछ कंट्रोल आ जाएगा, वो भी नहीं कंट्रोल, कहां से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? वो सब परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो रहा है, पर नहीं तो हमसे तो वो भी नहीं कंट्रोल में। हम सबसे बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी कृपा है। इस मंदिर में भी जब हम रह रहे हैं, इस कौन में भी हैं, प्रभुपाद जी कृपा से ही हमें भगवान अपनी सेवा में लगाए, यह गुरु महाराज की कृपा से ही भगवान ने हमें अपनी सेवा में रखा है। इसलिए जब आचार्यों के जब टिप्पणियां पढ़ते हैं या भजन पर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, योग्यता विचारे कि चुनाई पाए तुम्हार करुणा सार, या हम अपनी योग्यता को देखने चले कुछ भी नहीं, इससे उससे भगवान की कृपा है हमें अपनी सेवा में लगाया। तो हम वो कंट्रोलर की भावना को छोड़ के अगर सिर्फ भगवान की सेवा करने की भावना में रहे तो हमारा उद्धार हो सकता है। और यही भावना लानी है, यही चेतना, यही कॉन्शियसनेस, जैसे शुरू में मैंने कहा था सारा गेम जो है कॉन्शियसनेस का है, ये हमारी कॉन्शियसनेस में आना चाहिए कि आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के दास के दास के दास का दास। और जब हम ऐसी चेतना में आएंगे, हमारी सेवा करने की इच्छा होगी, हम सेवा करेंगे भी भगवान की भी भगवान के भक्तों की, तब हमारी शुद्धि होगी। अभी तो हम कंट्रोलर बने हैं, शुद्धि तो खर है ही नहीं, पूरी की पूरी अशुद्धि हुई पड़ी है। यही तो चेतना शुद्ध करनी है कि नियंता की भावना से हटना है, सेवा की भावना में आना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का नित्य दास, और कोई काम नहीं। इसलिए दीक्षा, दीक्षा मतलब जब हमारी भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में जब शुरुआत होती है तो हमारे नाम के पीछे टाइटल लग जाता है, दास दासी, अब शुरुआत हुई है। तो इसीलिए है कि हमारा स्वरूप ही यही है सेवा करना, बिना नियंता की भावना से, सेवा की भावना से। जब ऐसा करेंगे तो हल्के 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 हमारी शुद्धि होगी और फिर हम भगवान के धाम जाने के लायक बनेंगे, जहाँ सब कोई कृष्ण की सेवा करता है। एकेला ईश्वर कृष्ण और सब नृत्या, और सब उसकी सेवा करते हैं। तो समय हो रहा है और यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है कर सकते हैं। ऐसा ही पड़ा है। आध्यात्मिक जगत तीन पाद विभूति है, भौतिक जगत एक पाद है। तो आध्यात्मिक जगत अगर मेटीरियल कैलकुलेशन देखें तीन गुना बड़ा है। वैसे अनलिमिटेड है, एवर एक्सपेंडिंग है, फिर भी तीन गुना बताया गया। तो वहां कितने जीव होंगे? यस फ्रेंड,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
आज आपने आत्मा का वो बताया ना, ट्रांसफॉर्मेशन, जिस प्रकार अपने मोबाइल फोन होते सिम कार्ड वही होता है, जब कोई मॉडल ले जाए सिम कार्ड ने वही काम करना है जो उसमें फीड किया हुआ है।
अलग अलग मॉडल में आके उस मॉडल के हिसाब से काम कर पाता। आईफोन में जाएगा तो ज्यादा काम करेगा, किसी दूसरे फोन में रहेगा तो कम काम कर पाएगा। यस,
जो बड़े लोग हैं जिनके जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़्यादा मतलब बुजुर्ग हैं, या फिर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के लिए भी प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव ने बिल्कुल मैच्योर अवस्था में भागवतम की रचना की है, तो इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो फिर इसको कैसे समझें?
मैच्योर अवस्था में तो उन्होंने लिखी थी, पर सुनी किससे थी? सबने बैठ के सुनी किससे थी? 16 साल के एक बालक से। और फिर देखो ना, जब हम प्ले ऑर्गेनाइज करते हैं, प्ले करते हैं, और उसमें बैठ के कोई बच्चा 5 साल का बच्चा एक ज्ञान पूरा अच्छे से दे रहा हो, लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखो इतने छोटे से बच्चे में कितना ज्ञान है, बड़े आदमी तो एक्सपेक्ट करते ही होगा, तो छोटे बच्चे में इतना सारा ज्ञान है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये टेंडेंसी है, तभी यमराज भी बालक के रूप में आए। बड़ों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है, उसमें कमियां निकालते हैं, अरे इसने कुछ गलत बोला, बच्चा अगर कुछ गलती भी कर दे उसे दे, बच्चा है ना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो बच्चे भी बन के आए थे क्योंकि स्त्रियां बैठी थी, उनको ज्ञान देना था, तो उस समय और रो रही थी, तो उनको लगा बच्चे के रूप में जाए तभी शायद सुनेंगी। और कोई टीका टिप्पणी? तो प्रभु जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हो सकता है चेतना की बात तो की है, हो सकता है मेरी भी कुछ चेतना में शुद्धि आए इसके बाद। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुत रमाई की जय, श्रील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेम।